नमस्कार दोस्तों, मैं अंजलि जोशी
और मैं नरेंद्र तिवारी
एक बार फिर लेकर हाजिर हैं आपका अपना कार्यक्रम जिसका नाम है
जब चले शहर की ओर। दोस्तों, आज कार्यक्रम की 21वीं कड़ी है और आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि गांव को छोड़कर जो प्रवासी भाई अपनी पत्नियों से दूर शहर में रह रहे हैं, इसका उनकी शादीशुदा जिंदगी पर क्या असर पड़ता है।
हाँ नरेन, पति पत्नी जिन्हें हमेशा एक दूसरे के साथ की जरूरत होती है, वो एक दूसरे से कैसे दूर रह सकते हैं? और अगर दूर रहते भी हैं, तो क्या वो अलग अलग रहकर भी एक दूसरे का साथ दे पाते हैं?
दोस्तों, आज हम इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि हमारा ये कार्यक्रम फोर्ड फाउंडेशन और इक्वल एक्सेस के वित्तीय सहयोग से आइडियो सिंक मीडिया कंबाइन द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है, जिसके जरिए हम आप तक पहुंचाते हैं प्रवास से जुड़ी तमाम महत्वपूर्ण जानकारियाँ।
दोस्तों, हम अपने कार्यक्रम के जरिए जो जानकारियाँ आपको देते हैं वो तो आपको मिलती ही हैं, लेकिन उसके अलावा भी अगर आप कोई अन्य जानकारी चाहते हैं या फिर आपके मन में प्रवास से जुड़ा कोई सवाल है, तो आप हमें अपना सवाल हमारे फोन नंबर 9197176782 पर SMS कर सकते हैं।
और आइए अब सुनते हैं धारावाहिक शहर की ओर की अगली कड़ी।
दोस्तों, पिछली कड़ी में आपने सुना गांव में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर हरेंद्र को जिला के बड़े अस्पताल में चेकअप करवाने की सलाह देते हैं। उन्हें शक है कि पीने की वजह से हरेंद्र के लीवर में पानी भर गया है। बलराम अपने बेटे के जन्मदिन पर ढाबे के दोस्तों के लिए एक पार्टी रख रहा है, जिसमें वो चाहता है कि चंदर खाना बनाए। उमेश को एक टीवी सीरियल बनाने वाली कंपनी में नौकरी मिल गई है और गांव में वहां चंदर के फोन आने की खबर सुनकर मधु खुशी से दौड़कर सुषमा के घर जाती है। अब सुनते हैं आगे की कहानी।
अरे छोटू, अभी तक फोन नहीं आया।
अरे बाऊजी, आधा घंटा तो हुआ है, आ जाएगा। ये लो, आ गया आपका फोन।
आ गया, उठा लो।
हाँ हाँ, उठा लीजिए।
हेलो हेलो
हेलो, हाँ हाँ, मधु, चंदर बोल रहा हूँ।
नमस्ते, बोलिए, मैं सुन रही हूँ।
मधु, मुझे यहाँ एक ढाबे पर नौकरी मिल गई है।
सच?
हाँ।
आपने इतने दिनों बाद फोन क्यों किया?
ओहो, अब भाई मैं क्या करता, मैंने तो कई बार कोशिश की लेकिन फोन ही नहीं लग रहा था।
बाकी लोगों के फोन कैसे लगते हैं? लगता आप मुझे भूल ही गए हो।
अब तुम फोन पर ही रोना शुरू मत कर देना, मेरे पास अभी ज्यादा वक्त नहीं है।
हाँ हाँ, अब मेरे लिए कहाँ वक्त होगा आपके पास।
तुम एक काम करो, एक नंबर लिख लो।
बोलो।
921 9 2 1 4 0 3 4 0 3 3 6 7 8।
3 दोबारा से?
हाँ,
3 6 7 8। एक बार फिर बोलती हूँ, 9 2 1 4 0 3 3 6 7 8।
हाँ, ये गजेंद्र का नंबर है, मेरा नया दोस्त है, कभी जरूरत पड़े तो इस पर फोन कर लेना, वैसे मैं पैसे आते ही अपना मोबाइल खरीद लूंगा।
जी।
अच्छा एक बात बताओ, घर पर सब कैसे हैं? बौजी कैसी हैं?
दीदी ठीक है, अगले महीने कभी भी उनकी डिलीवरी हो सकती है, हो सके तो कुछ पैसे भेज दीजिएगा। और जेठ जी की तबीयत भी खराब हो गई है, लेकिन पीना बंद कर दिया उन्होंने, डॉक्टर के पास गए थे दोनों।
वैसे मुझे इस महीने के आखिर तक पैसे मिलने की उम्मीद है।
कितनी तनख्वाह मिल रही है आपको?
अरे भाई, वो अभी कुछ पक्का नहीं है।
पक्का नहीं है?
अरे तू वो सब छोड़, अब जरूरत पड़े तो साहूकार से कुछ पैसे उधार ले लेना।
जी ठीक है।
और हाँ, घर पर सबको मेरी तरफ से दिवाली की शुभकामनाएं देना।
क्या, आप दिवाली पर भी घर नहीं आ रहे हो?
अब भाई अभी कैसे आ सकता हूँ?
क्यों, एक दो दिन की छुट्टी नहीं ले सकते?
मिल जाती तो आ नहीं जाता।
मिल जाती तो आ नहीं जाता। अच्छा एक बात बताओ, मेरे काम करोगे?
कौन सा काम मधु, जल्दी बताओ, बिल बढ़ रहा है।
वो दिल्ली में ना कोई विश्वविद्यालय है, इग्नू, सुना है घर बैठे कॉलेज की पढ़ाई करवाते हैं, आप थोड़ा पता कर सकते हैं इसके बारे में?
मैं यहाँ काम करने आया हूँ मधु, तुम्हारी पढ़ाई के बारे में पता करने नहीं।
मैं थोड़ी कह रही हूँ कि काम छोड़कर जाओ, पर जब फुर्सत मिले तो।
मेरे पास नहीं है टाइम, वहाँ बैठे बैठे बोल रही हो ये करो वो करो, मैं थोड़ा सा सुन क्या लेता हूँ, तुम तो सर पर ही चढ़ी जा रही हो।
हाँ पैसे कैसे बात कर रहे हो, मैं यहाँ खाली नहीं बैठी हूँ, काम ही कर रही हूँ, सिर्फ पैसे ही नहीं मिलते हैं बस।
नहीं मिलते ना पैसे तो फिर हुकुम मत चलाओ, मुझे अभी काम पर भी जाना है, माँ को नमस्ते बोलना।
हेलो हेलो,
ये दवाइयाँ टाइम पे लेना है और एक हफ्ते के बाद फिर से चेकअप के लिए आना है, ठीक है?
जी डॉक्टर साहब, नमस्ते।
नेक्स्ट। अरे भाई अगला कौन है?
जी डॉक्टर साहब, मैं।
हाँ अंदर आओ।
जी डॉक्टर साहब।
अरे भाई क्या नाम बताया था?
जी हरेंद्र।
हाँ हरेंद्र, हाँ बैठो।
जी।
ये खून की जांच की रिपोर्ट और एक्सरे की रिपोर्ट लाए हो?
जी, ये लीजिए।
तुम्हारे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर का शक सही था, लीवर की हालत तो बहुत खराब है।
मतलब?
देखो, मदिरा पान करने से लीवर पे बहुत असर पड़ता है, और लीवर जब पूरी तरह से खराब हो जाता है तब बहुत सारी परेशानियां शुरू हो जाती हैं, जान को भी खतरा हो सकता है।
क्या?
आप अपने पति को समझाइए कि पीना उनके सेहत के लिए अच्छा नहीं है।
डॉक्टर साहब, मैं तो कहते कहते थक गई, पर मेरी सुनता ही कौन है।
भाई देखो हरेंद्र, अपने लिए नहीं तो आने वाले बच्चे के लिए ही सही, कम से कम बच्चे की देखभाल करने के लिए तो तुम्हारी सेहत अच्छी होनी चाहिए ना।
जी डॉक्टर साहब।
अब घबराने की जरूरत नहीं है, समय पे दवाइयां लेते रहना, लेकिन हाँ हरेंद्र, उपचार के दौरान मदिरा पान करना बिल्कुल मना है।
जी डॉक्टर साहब।
ये लीजिए दवाई के लिए पर्ची।
जी धन्यवाद।
और हाँ, अपना ख्याल रखना, समय पर दवाइयां लेनी है और मदिरा पान बिल्कुल नहीं।
जी।
हाँ भाई नेक्स्ट। अरे अंदर आओ।
भाई बेटे का जन्मदिन मुबारक हो बोल रहा हूँ।
मुबारक भैया।
अरे भैया क्या बताऊँ, इतना शरारती है मेरा बेटा कि पूछो मत।
अच्छा?
हाँ, अरे एक बार तो उसने हद ही कर दी। पता है, मेरी और तुम्हारी भाभी की शादी की फोटो देख रहा था,
फिर
तो पूछता है कि पापा इसमें मैं कहाँ पर हूँ।
तो फिर तूने क्या कहा उससे? बोल रहा
हूँ। क्या कहा भैया?
अरे अब उसे क्या बताता, यही कि बेटा तब तो तेरे बारे में प्लानिंग भी नहीं की थी। लेकिन भैया सचमुच कभी कभी बहुत याद आती है।
किसकी बलराम भैया, बेटे की या भाभी की?
वैसे दोनों की आती है, तुम्हारी भाभी की भी और बेटे की भी।
अच्छा, तो बलराम भैया आप उन्हें अपने साथ यहाँ क्यों नहीं लाते?
अरे चंदर, इतना आसान नहीं है उन्हें यहाँ साथ रखना। अरे यहाँ महंगाई कितनी है, अब इतनी कमाई भी तो नहीं है। परिवार को लेकर आऊंगा तो उन्हें यहाँ थोड़ी रख सकता हूँ, अलग से कमरा लेना होगा। अच्छा चंदर, अरे तेरे को ये बुढ़ा मालिक कितने पैसे दे रहा है, बात हुई तेरी इससे?
भैया मैंने बात तो की थी, पर उन्होंने साफ साफ बताया नहीं कि मुझे कितने पैसे देंगे।
अगर ये बात साफ कर ले तो ही बढ़िया है, पैसे के मामले में बड़ा चालाक है ये बुढ़ा। मुझे तो लगता है बलराम भैया वो कल्लू ने भी कहीं और ही काम पकड़ लिया है। हाँ
हाँ, हो सकता है भैया। अरे बेचारे को दो महीने से तो कुछ पैसे दिए नहीं थे।
हाँ?
अरे गजेंद्र,
हाँ?
तूने इसके पैसे की बातचीत क्यों नहीं की?
अब बलराम देख, मुझे उस वक्त ये सूझा ही नहीं भाई, मुझे तो बस यही लगा कि ये बेचारा परेशान है, बस इसके रहने और खाने का इंतजाम हो जाए। अब तुझे तो पता ही है पैसे के नाम पर वो बुड्ढा कैसे पीछे हट जाता है।
अरे कोई बात नहीं गजेंद्र, तुमने जो कुछ उस वक्त मेरे लिए किया वो भी मेरे लिए बहुत है।
अरे चलो भैया, अब ये सब बातें छोड़ो। वैसे एक बात तो है भैया, आज गढ़वाली खाना खाकर मजा आ गया चंदर। खाना जबरदस्त बनाया था तूने।
वैसे मुझे लगा कि नमक थोड़ी ज्यादा हो गई।
अरे नहीं 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 यार, नहीं, सब ठीक था। वैसे बलराम, इसको किचन में तुम अपनी जगह पे बिठा ही दो, बंदा सीख गया काम।
अरे गाय मेरे पेट पे लात मार रहा है तू है।
मधु? ए मधु।
जी माँ जी।
कल चंदर का फोन आया था?
हाँ माँ जी आया था।
और तूने मुझे बताया तक नहीं?
वो माँ जी आप सो रही थी तो मुझे लगा।
हाँ तुझे लगा, क्या लगा तुझे कि बुढ़िया हमेशा के लिए सो गई और अब कभी नहीं उठेगी?
नहीं नहीं माँ जी ऐसी बात नहीं है।
अरे ऐसी बात नहीं है तो फिर कैसी बात है, मुझे बेवकूफ मत समझ। अगर सुषमा की माँ ना बताती तो मुझे तो अब भी बताना चलता।
जी ऐसी बात नहीं है माँ, मैं आपको बताने ही वाली थी।
चल चल छोड़, अब ये बता चंदर ने पैसों की भी कोई बात की कि नहीं, कब भेज रहा है वो पैसे?
जी वो कह रहे थे कि नौकरी मिल गई है, पैसे महीने के आखिर तक मिलेंगे।
और क्या कहा उसने?
उन्होंने कहा अगर पैसों की ज्यादा जरूरत पड़े तो साहूकार से उधार ले लेना, और साथ में अपने किसी दोस्त का नंबर भी दिया है, बोला है अगर कुछ काम हो तो फोन कर लेना।
चल ठीक है, अगले हफ्ते दिवाली से पहले साहूकार के यहाँ जाकर कुछ पैसे ले आना, वरना मुझे नहीं लगता कि इस बार इस घर में दिए जलाने के लिए भी तेल आएगा।
जी माँ जी।
दोस्तों आप सुन रहे हैं कार्यक्रम जब चलें शहर की ओर। नरेन, क्या तुम्हें नहीं लगता कि कई बार ये प्रवास पति पत्नी के रिश्तों के बीच कड़वाहट की वजह बन जाता है? ये प्रवास जमीनी फासलों के साथ साथ उनके दिलों में भी दूरियां बना देता है।
अरे नहीं अंजलि, अगर पति पत्नी दोनों समझदारी से काम लें और एक दूसरे को समझें तो उनके बीच इस तरह की स्थिति आनी ही नहीं चाहिए। बाकी हमारे प्रवासी भाई इस बारे में क्या कहते हैं, आइए उन्हीं से सुनते हैं।
हाँ, ये सच है कि पत्नी से दूर रहने में शादीशुदा जिंदगी में झगड़े होने लगते हैं। काफ़ी हद तक देखा गया है कि इन आपसी झगड़ों की वजह से पुरुष जो हैं अन्य महिलाओं की तरफ आकर्षित होने लगते हैं। इन आकर्षणों से निपटने के लिए काफ़ी उपाय हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हमें अपने ऊपर संयम रखना चाहिए और सबसे बड़ी बात है इनसे होने वाले परिणामों को ध्यान में रखते हुए अपनी ज़िंदगी को देख कर हमें आगे कार्य करने चाहिए। मेरी भी ज़िंदगी में एक ऐसा ही वाक्या हुआ था जब मैं शुरुआत में दिल्ली में आया था। एक महिला के साथ मेरा आकर्षण हुआ, मैं उसे पसंद करने लगा और महिला भी मुझे पसंद करने लगी। तो जब मैं इस बात पे गौर किया कि ऐसे संबंधों का कोई परिणाम नहीं होता है और ये सब गलत होता है, काफ़ी मुश्किल हुआ, लेकिन मैंने अपने दिल से उस चीज़ को निकाला और अब मैं अपनी पत्नी के साथ ज़्यादा वफादारी निभाने में समझदारी समझता हूँ।
महिलाएं हमेशा गांव में रहती हैं और पुरुष जो हैं कमाने के लिए दिल्ली आए हुए होते हैं या शहर आए हुए होते हैं, तो उनके दूर रहने से मानसिक तनाव के कारण ये एक स्वाभाविक चीज़ है जो कि एक झगड़े हो ही जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि पुरुष जो है मानसिक तनाव के कारण कह सकते हैं कि वो आकर्षित हो जाते हैं। इसके लिए सबसे अच्छा उपाय ये है कि पति और पत्नी दोनों एक साथ रहें।
शादीशुदा जिंदगी में जब पत्नी से दूर रहने पे झगड़े हो जाते हैं, पत्नी जैसे गांव में रहती है तो वो कहती है कि मुझे अपने साथ ही ले चलो और वहाँ सास ससुर के साथ किसी तरह के एडजस्टमेंट नहीं कर पाती हो। अब जैसे कोई डांट वाट पड़ती है उसको तो वो कहती है, वो लड़ती है वहाँ पे और फिर बाद में पति के साथ भी लड़ाई होती है। फिर ऐसा होता है कि पुरुष दूसरी औरतों की तरफ भी आकर्षित हो जाते हैं, इसकी वजह से जो है और लड़ाइयाँ होती हैं। पत्नी को भी समझदारी होनी चाहिए और पति को भी समझदार होना चाहिए और आपस में एडजस्टमेंट करना चाहिए दोनों को।
तो दोस्तों, ये तो थे हमारे प्रवासी भाइयों के विचार और इन विचारों को हम तक पहुंचाने के लिए हम अपने सामुदायिक संवाददाताओं का धन्यवाद करते हैं।
दोस्तों, अगर समस्या है तो समाधान भी है। अलग अलग रहने से पति पत्नी के बीच आई दिलों की इन दूरियों को कैसे कम किया जाए, आइए जानते हैं हमारे अगले सेगमेंट कुछ विश्वास में।
नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ हैं मनोवैज्ञानिक डॉक्टर नीलिमा पांडे। नीलिमा जी, हमारे ज़्यादातर श्रोतागण अपने परिवार से दूर शहरों में काम करते हैं और इन दूरियों की वजह से उनके शादीशुदा जिंदगी में तनाव आ जाता है, ऐसा क्यों होता है?
देखिए, तनाव की वजह दूरियां नहीं होती। तनाव उत्पन्न होता है जब वार्तालाप की जगह नहीं होती, कम्युनिकेशन गैप होता है रिश्तों में, खासकर पति पत्नी के, क्योंकि दोनों अपनी अपनी जगह जिम्मेदारियां निभा रहे होते हैं। इन सब के चलते आता है तनाव। समस्या यहाँ पर थोड़ा बड़ी होती है क्योंकि दूरियाँ बहुत होती हैं, बातचीत हो नहीं पाती और विरह की वेदना अलग होती है कि एक ही एक साथी है ले देकर, वो भी साथ में नहीं है, उसकी वजह से दुख बहुत रहता है दोनों को।
अच्छा, ये बताइए कि इस प्रकार की मनोस्थिति से जूझने के लिए क्या करना चाहिए?
देखिए, जैसा मैंने कहा कि रिश्ते में दूरियाँ तो हैं ही नहीं दोषी, वो तो एक कारण है जिसकी वजह से बातचीत नहीं हो पा रही। तो बातचीत को करते रहना चाहिए और कोशिश ये करनी चाहिए कि अगर कोई निर्णय हुआ है, अगर आपने यहाँ अकेले कोई निर्णय लिया है अपने जीवन के बारे में, तो उसके कारण ज़रूर अपनी पत्नी को बताएं। और पत्नियों का भी ये फ़र्ज़ है कि उन या आप उनको इस तरीके से प्रेरित करें, उनको समझाएं कि देखो वहाँ जो स्थिति है हमको साफ बताओ, हमसे बातचीत करो और आप थोड़ा पैसा जो कमाते हैं उसको थोड़ा संप्रेषण यानी बातचीत में लगाएं। और मैं तो ये कहती हूँ कि थोड़ा पुराना तरीका अपनाने में कोई हर्ज नहीं है। चिट्ठी लिखिए, हर हफ्ते चिट्ठी लिखिए, हफ्ते भर आपको क्या हुआ, क्या सुख दुख मिले, क्या किया आपने चिट्ठी लिखिए, फ़ोटो वोटो भेजते रहा करिए। साथ में हर एक महीने में या जितना भी आपकी फाइनेंशियल स्थिति, आपकी आर्थिक स्थिति आपको अलाउ करती है, नौकरी अलाउ करती है, समय निकाल कर मिलिए ज़रूर उनसे, खासकर त्यौहार पे, और वो त्यौहार जो कि पति पत्नी के रिश्ते को मजबूत बनाते हैं, जैसे करवा चौथ है, दिवाली है, ज़रूर उनके पास जाइए, उनके लिए उपहार लेकर जाइए और हर हालत में बातचीत को ख़त्म मत करिए। और मुझे नहीं लगता कि विवाह एक ऐसा बंधन है जो टूट सकता है।
नरेंद्र, तुम्हें पता है कि कई बार बार ये प्रवास पति पत्नी के बीच अलगाव का कारण भी बन जाता है।
वो कैसे अंजलि?
कई बार गांव में रहने वाली औरतों को लगने लगता है कि कहीं उनके पति का शहर में किसी और औरत के साथ।
ओफो अंजलि, ये शक करना ना तुम औरतों की पुरानी बीमारी है।
ए नरेन, ऐसा मत बोलो। हाँ, कई बार ये बातें सच भी होती हैं।
ओके, लेकिन तुम मानती हो ना औरतें बहुत ज्यादा शक करती हैं।
हाँ, थोड़ा बहुत तो करती हैं, लेकिन इसमें सच्चाई है, ये तो मानोगे ना। हमारे कार्यक्रम की शुरुआत में हमारे कुछ श्रोताओं की भी यही राय थी, लेकिन सवाल यहाँ ये उठता है नरेन कि इस शक का क्या समाधान है? औरतें अपने इस शक को कैसे दूर करें, कैसे अपने पति से इस बारे में बातें करें?
अंजलि, बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन भाई मैं कैसे कुछ बता सकता हूँ? अरे मेरी जिंदगी में थोड़ी ऐसा कुछ हुआ है।
तुमसे तो कुछ भी पूछना बिल्कुल बेकार है। इस समस्या के समाधान के लिए भैजी को ही बुलाते हैं।
मैं हूँ भैया भाई सब, मुझसे करो सवाल, बात हो छोटी बड़ी हो या फिर हल देता हूँ निकाल, बात करता हूँ लाख पते की, पूछो कोई सवाल, क्योंकि मैं हूँ भैजी लाल, मैं हूँ भैजी लाल।
नमस्कार भैजी।
नमस्कार अंजलि, कैसी हो?
भैजी मैं बिल्कुल ठीक हूँ।
और नरेन भाई तुम कैसे हो?
भैजी मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज अंजलि ने मुझे एक ऐसे सवाल में फंसा दिया है जिसका मेरे पास जवाब ही नहीं है।
अरे अंजलि, ऐसा कौन सा सवाल पूछ लिया तुमने नरेन से?
भैजी मैंने तो बस इतना पूछा था कि अगर पत्नी को अपने पति पर शक होता है कि उसका शहर में किसी और औरत के साथ संबंध है, तो वो पत्नी अपने पति से इस बारे में कैसे बात करे? क्योंकि भैजी अगर वो बात नहीं करेगी तो वो तो शक की आग में जलती रहेगी ना।
तो ये बात है भाई। देखो, पहली बात तो पति पत्नी का रिश्ता विश्वास पर टिका होता है। दोनों को एक दूसरे पर विश्वास करना चाहिए, और अगर दोनों में से कोई भी किसी को इस तरह का धोखा देता है तो सबसे पहले वो धोखा खुद के साथ कर रहा है, पति पत्नी के पवित्र रिश्ते के साथ धोखा कर रहा है।
सही कहा भैजी आपने।
अब रही बात औरतें अपने पति से इस बारे में कैसे बात करें, तो मेरा तो मानना ये है कि अगर इस बारे में औरतें बहुत नाराज होकर गुस्से से बात करेंगी तो बात बनने के बजाय और बिगड़ जाएगी। ये शक उनके रिश्ते में और भी अधिक दूरी ला सकता है, इसलिए इस बारे में बहुत ही साधारण तरीके से और सही मौका देखकर बात करनी चाहिए।
बिल्कुल सही कहा भैजी आपने।
अच्छा, जितनी समझदारी से यहाँ औरतों को काम लेना चाहिए, उतनी ही समझदारी से पुरुषों को भी सोचना चाहिए। अगर उन्हें लगता है कि उनकी पत्नी उन पर शक कर रही है तो उन्हें उनके उस शक का समाधान तुरंत कर देना चाहिए।
जी भैजी।
क्योंकि शक वो कीड़ा है जो रिश्ते को बहुत तेजी से खोखला करता है, और इससे पहले कि शक आपके रिश्ते को खोखला करें, आप उस शक को ही खत्म कर दें।
अच्छा भैजी, कभी आपकी जिंदगी में भी ऐसा कुछ?
मेरी जिंदगी में हाँ, एक बार जब मैं 8 महीने बाद शहर से अपने गांव वापस गया था तो तुम्हारी बाऊजी ने मुझसे पूछ लिया, क्यों जी इस बार गांव आने में इतना समय क्यों लगा दिया, कहीं शहर में मुझसे भी कोई खूबसूरत कोई और तो नहीं मिल गई आपको?
फिर भैजी आपने क्या जवाब दिया?
मैंने कहा, शांति ये बात तो सच है कि शहर में एक से एक सुंदर लड़कियां हैं, पर तेरी जैसी खूबसूरती और सादगी किसी में नहीं, जिस पर फिदा होकर मैंने तुझे अपना जीवन साथी चुना था।
भैजी आपका ये अनुभव सुनकर हमें ये सीखने को मिला कि पति पत्नी की खूबसूरत रिश्ते को मजबूत बनाए रखने के लिए जरूरी है कि अपने प्यार और अपनी भावनाओं का इजहार अपने जीवन साथी के साथ करते रहें।
तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि भैजी द्वारा बताए गए समाधान को सुनने के बाद आपकी शादीशुदा जिंदगी में शक की दीवार कभी नहीं आएगी।
और अगर आती भी है तो आप पति पत्नी दोनों मिलकर उस दीवार को गिरा सकते हैं, ताकि आपके रिश्ते में हमेशा प्यार बना रहे। और इसी के साथ हम अपने भैजी का भी धन्यवाद करते हैं जिन्होंने अपना इतना अनमोल अनुभव हमारे साथ बांटा। भैजी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद।
दोस्तों, आज काम की बात में हम आपको जानकारी देने वाले हैं दिल्ली की कुछ ऐसी संस्थाओं के बारे में जो युवाओं और बेरोजगारों को तकनीकी और व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करती हैं।
तो आइए सुनते हैं काम की बात। दोस्तों, ऐसी कई संस्थाएं हैं जो आपको तकनीकी और व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करती हैं। इनमें से एक है अर्पणा।
यहाँ पर आप प्री स्कूल इंस्ट्रक्टर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसमें आपको छोटे बच्चों के रखरखाव के संबंध में जानकारी और प्रशिक्षण दिया जाता है, और इसके आधार पर आप प्री नर्सरी स्कूल्स या क्रैश में नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा आप अर्पणा संस्था से केटरिंग, खाना पकाने, पुस्तकालय विज्ञान, सिलाई और गिफ्ट का सामान तैयार करने के लिए क्राफ्ट मेकिंग जैसे कोर्सेज भी कर सकते हैं। साथ ही ये संस्था कंप्यूटर, इलेक्ट्रिकल और गैस वेल्डिंग जैसे कोर्सेज भी उपलब्ध करवाती है।
अधिक जानकारी के लिए आप यहाँ संपर्क भी कर सकते हैं। इसका ऑफिस डिफेंस कॉलोनी दक्षिणी दिल्ली में स्थित है और यहाँ का फोन नंबर है 0114155061।
ऐसी ही एक और संस्था है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री डेवलपमेंट काउंसिल, जो कि दक्षिणी दिल्ली के नेहरू प्लेस में स्थित है। भारत सरकार द्वारा चलाए जाने वाला ये परिषद भू निर्माण से जुड़े कई छोटे छोटे कोर्सेज करवाता है,
जैसे
भूमि निरीक्षण और भंडार प्रबंधन आदि।
ये तो बहुत ही अच्छी बात है नरेन। तो हमारे जो भी श्रोता भू निर्माण के क्षेत्र में काम करना चाहते हैं, वो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री डेवलपमेंट काउंसिल से संपर्क कर सकते हैं। वहाँ के फोन नंबर हैं 0112623470 और 26451766।
इसी तरह की संस्थाओं की सूची में एक और नाम भी है और वो नाम है प्रयास। प्रयास एक ऐसी संस्था है जो कि व्यवसायिक कोर्सेज करवाती है। इनमें कंप्यूटर और गृह प्रबंधन के कोर्सेज शामिल हैं।
सबसे खास बात यह है कि ये संस्था आपको प्रशिक्षण देने के बाद नौकरी दिलवाने में मदद भी करती है। आप चाहें तो यहाँ संपर्क भी कर सकते हैं। इसका कार्यालय भी दक्षिणी दिल्ली में ही तुगलकाबाद इंस्टीट्यूशनल एरिया में स्थित है। यहाँ के फोन नंबर्स भी आप नोट कर सकते हैं। नंबर्स हैं 0112995624 और 2995555005। दोस्तों ये तो थी काम की बात, और अगर अब भी इस जानकारी से जुड़ा हुआ कोई सवाल आपके मन में है या फिर आप कुछ और जानकारी चाहते हैं, तो आप हमें अपना सवाल हमारे नंबर पर SMS कर सकते हैं। नंबर है 9197176723। और अब
बारी है आपकी चिट्ठी की।
और हमारे श्रोता चाहते हैं कि हम जल्दी से उस लकी विजेता का नाम घोषित कर दें जिनकी चिट्ठी को आज के कार्यक्रम के लिए चुना गया है
और जिन्होंने जीता है एक खूबसूरत सा ट्रैवल बैग।
तो दोस्तों आपका इंतजार खत्म हुआ। हमारे आज के लकी विजेता हैं ठाणे वेस्ट के दयानंद जोशी जी।
हाँ तो भाई अंजलि जोशी, क्या लिखा है दयानंद जोशी जी ने अपनी चिट्ठी में?
नरेन, दयानंद जोशी जी ने अपनी चिट्ठी की शुरुआत हमारे कार्यक्रम की तारीफ के साथ की है। ये लिखते हैं कि जब चले शहर की ओर कार्यक्रम मैंने रेडियो के माध्यम से सुना, ये कार्यक्रम अति प्रिय लगा।
अरे थैंक यू वेरी मच दयानंद जी।
आगे लिखते हैं नरेन कि जब मैं शहर की ओर चला तो मेरे पिताजी ने 3 बातें कही, हिम्मत मत हारना, ईमानदारी का साथ मत छोड़ना और कठिन परिश्रम करना। मैंने ये 3 बातें अपने दिलो दिमाग में रख ली। मैं उस वक्त 20 साल का था जब गांव से दिल्ली शहर की तरफ चल पड़ा। मैं अपने साथ अपने एक मित्र का पता लेकर आया था जो गुड़गांव में रहते थे। जैसे तैसे गुड़गांव पहुंचा तो पता चला कि उन्हें कंपनी ने मद्रास भेज दिया था और वो कमरा छोड़कर चले गए थे। मैंने मकान मालिक से कहा कि मैं उनका मित्र हूँ। उसने कहा कि मैं तुम्हें नहीं जानता और वहाँ रहने से भी उसने मना कर दिया। मेरी हालत बहुत खराब हो रही थी। जैसे तैसे दिल्ली रेलवे स्टेशन पर वापस पहुंचा। एक मन तो ये कर रहा था कि मैं फिर से वापस गांव लौट जाऊं, लेकिन पिताजी की कही हुई बात याद आ गई, हिम्मत मत हारना। तब विचार बदल गया। नरेन, यहाँ इन्होंने एक शेर लिखा है, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, हिम्मत करने वाले की कभी हार नहीं होती।
वाह दयानंद जी, क्या खूब लिखा है।
आगे लिखते हैं कि कभी सुना था कि मुंबई एक मायावी शहर है और वहाँ बड़े बड़े लोग रहते हैं, तो मैं मुंबई की तरफ चल पड़ा। देहरादून एक्सप्रेस में जनरल डिब्बे में बैठ गया। डिब्बे में काफी भीड़ थी। आधी रात बीतते बीतते मुझे नींद आ गई। जब सुबह हुई तो पता चला कि मेरा पर्स और टिकट चुरा लिए गए थे। मैं बहुत दुखी हुआ। मन में TC का डर भी सता रहा था। मेरी कमीज की जेब में सिर्फ 20 रुपए बचे थे। फिर मैं मुंबई सेंट्रल आया। जब बाहर निकल रहा था तो TC ने पकड़ लिया। मैं पहले से ही काफी डरा हुआ था। मेरी आंखों से आंसू निकल आए। जो कुछ मेरे साथ घटा था मैंने सब कुछ सच सच कह सुनाया। TC एक दयालु इंसान था। उसने मुझे छोड़ दिया। मैं उस TC का धन्यवाद करना चाहता हूँ। ये आगे लिखते हैं कि मुंबई पहुंचकर मैं एक होटल में लग गया और मुझे धीरे धीरे मुंबई का अनुभव होने लगा। 12-14 घंटे की नौकरी करनी पड़ी। सेठ को मेरी मेहनत और ईमानदारी पर पूरा भरोसा था, लेकिन तनख्वाह बहुत कम थी। बड़े शहर में रहना, किराया भाड़ा देना, रहने की समस्या, सब कुछ बढ़ गई थी। तब मैंने नौकरी छोड़ दी और खुद धागे की मार्केटिंग करने लगा। काफी कठिन परिश्रम किया और एक खुद का घर लिया। आज मेरे बच्चे मुंबई में पढ़ते हैं और मैं अपने परिवार के साथ काफी खुश हूँ। मेरे पिता की कही हुई 3 बातों ने मुझे काफी कुछ सिखाया। मैं अपने माता पिताजी का धन्यवाद करता हूँ। वाकई दयानंद जोशी जी, आपने अपने संघर्ष भरे अनुभव को बिल्कुल सही शब्द दिए हैं। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, हिम्मत करने वाले की कभी हार नहीं होती।
दयानंद जोशी जी, अपने इस प्रेरणादायक अनुभव को हमारे साथ बांटने के लिए आपको मिलता है एक खूबसूरत सा ट्रैवल बैग, जो जल्द ही आप तक पहुंच जाएगा।
तो दोस्तों, आप क्या सोच रहे हैं? हो सकता है अगली बार आपकी चिट्ठी को हमारे कार्यक्रम के लिए चुना जाए। तो बस अपने खट्टे मीठे प्रवास से जुड़े अनुभवों को चिट्ठियों के जरिए हम तक भेजते रहिए।
आप हमें अपनी चिट्ठियाँ इस पते पर भेज सकते हैं, कार्यक्रम जब चलें शहर की ओर, 177 बेसमेंट अशोका एनक्लेव, पार्ट 3, सेक्टर 35, फरीदाबाद, हरियाणा 121003।
आप हमें अपने अनुभव ईमेल भी कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है shaherkiore@gmail.com।
और आपकी चिट्ठी के बाद अब बारी आती है आपके संदेशों की।
मेरा नाम प्रतिभा उप्रेती है। हम थाना मुंबई में रहते हैं। मैं अपनी मम्मी और पापा से संदेश देना चाहती हूँ और उनके लिए भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि वो अच्छे से रहें, अच्छे से अपने मतलब काम को करें। मन करता है कि उनके पास जाएं। आज पहला मौका मिला है रेडियो में उनसे बातें करने का, इसलिए मैं अपनी मम्मी पापा से प्रणाम बोलती हूँ।
हेलो, मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ, अजय रावत। यह संदेश मैं जिला पौड़ी गढ़वाल ग्राम कुंतला में अपने दादाजी को भेज रहा हूँ। दादाजी नमस्ते। हम सब यहाँ सपरिवार ठीक हैं और आप भी कुशल मंगल होंगे। दादाजी, अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो आप चाचा जी के साथ दिल्ली आ जाना। चाचा जी दिवाली में गांव आ रहे हैं और आप सबको हमारी तरफ से दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं और दादी जी को नमस्ते।
मैं भावना जोशी मुंबई थाना से बोल रही हूँ। मैं अपने मम्मी पापा को यह संदेश भेजना चाहती हूँ। मेरे मम्मी पापा चंपावत जिले के बिसाविराकोट गांव में रहते हैं। मम्मी जी प्रणाम। आप लोग अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना। भाई साहब और भाभी जी को प्रणाम। सुबिन दीपू ममता को बुआ का बहुत बहुत प्यार। और हम लोग यहाँ पर सब ठीक ठाक हैं। सपना की पढ़ाई ठीक चल रही है, वह स्कूल जा रही है। अब प्रिया भी बड़ी हो गई है, वह आंगनबाड़ी में स्कूल जाती है। गर्मी की छुट्टियों में हम लोग सब घर आएंगे। आपकी बेटी भावना जोशी।
और दोस्तों, अगर आप भी अपना कोई संदेश प्रोग्राम में शामिल करवाना चाहते हैं तो हमसे संपर्क कीजिए।
हमारा नंबर है 9197176782।
दोस्तों, ज्ञान बांटने से बढ़ता है और इसी तरह से जानकारियाँ भी बांटने से बढ़ती हैं। अगर आपके पास कुछ ऐसी जानकारियाँ हैं जिनका लाभ हमारे प्रवासी श्रोताओं को मिल सकता है तो आप हमें चिट्ठियों के जरिए उन्हें भेज सकते हैं। हम उन्हें अपने कार्यक्रम में शामिल करेंगे ताकि हमारे बाकी प्रवासी श्रोता भी उनका लाभ उठा सके।
साथ ही आप मिलजुल कर अपना क्लब तैयार कर सकते हैं, या फिर अगर आप पहले से ही किसी प्रवासी क्लब से जुड़े हुए हैं तो उसकी गतिविधियों की जानकारियां भी हमें भेज सकते हैं।
इसी के साथ हम अपने सहयोगियों हेवलवाणी चंबा और मंदाकिनी की आवाज भणज का भी धन्यवाद करना चाहेंगे।
और हाँ दोस्तों, हमें अपने खट्टे मीठे प्रवास से जुड़े अनुभव के साथ चिट्ठियां जरूर लिखते रहिएगा और ईमेल भी करते रहिएगा। हमारा ईमेल एड्रेस और पता आप एक बार फिर नोट कर सकते हैं। ईमेल आईडी है shaherkiore@gmail.com, यानी shaherkiore@gmail.com।
और पता है हमारा, कार्यक्रम जब चलें शहर की ओर, 177 बेसमेंट अशोका एनक्लेव, पार्ट 3, सेक्टर 35, फरीदाबाद, हरियाणा 121003।
तो दोस्तों, अब वक्त आ गया है आपसे इजाजत लेने का,
लेकिन अगले हफ्ते हम फिर हाजिर होंगे नई जानकारियों के साथ,
कुछ और मनोरंजन के साथ।
तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए।
नमस्कार। जब चले शहर की ओर।